अगली टिप लीजिए, हासिदों से हिफाजत का नुस्खा। पहली चीज़ है मुआवजात। अब देखिए ना, जैसे उर्दू में लिखा तो लोग पढ़ेंगे माउजात, और कई लोग पढ़ाते हुए हैं, पढ़ना तो जो पढ़ा रहे होते हैं माउजात कहते हैं, अरब नहीं होते तो अरबी और उर्दू का फ़र्क भी नहीं समझ आता। तो मुआवजात से मुराद सूरत फलक और नास, दो हिफाजत देने वाली सूरतें। वो आयतें और अज़कार जिनसे अल्लाह ताला की पनाह ली गई है, मसलन अज़कार और आम दुआएं। अल्लाह ने फरमाया, कहो मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तो ये पढ़िए सूरत फलक आयत 5। हासिद से अपने मामला छुपाइए, जैसा कि याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से फरमाया था, तुम एक दरवाजे से दाखिल ना होना बल्कि मुख्तलिफ दरवाज़ों से आना। यूसुफ 67। हासिद से दूर रहिए, फरमाया कि आप कह दीजिए अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते तो मुझे छोड़ दो। जी, हासिद की नज़र बड़ी लगने वाली होती है, याद रखिएगा। हासिद की अजियत से बचने के लिए इसके साथ एहसान करें। क्यों? फरमाया अहसिन। कैसे? अहसन तरीके से बुराई को दूर करो, तो लोगों का हसद इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं देगा। और अपना दिल अच्छा रखिए। कई दफ़ा आप कोशिश के बावजूद भी हासिदों से नहीं बच पाते। घरों में होते हैं लोग, साथियों में होते हैं, दोस्तों में होते हैं, अपनों में होते हैं, बिलीव मी। बाज़ दफ़ा शागिर्द उस्तादों से और बाज़ उस्ताद शागिर्दों से भी हसद करते दिखते हैं। तो क्या करें, बस ये कीजिए जो आपके सामने है। सिलसिला सहीहा की रिवायत है 257। आपने फरमाया, अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए राजदारी के साथ काम लिया करो, क्योंकि हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। कुल्लु ज़ी नेमतिन महसूद। तो आप एक्सपोजर क्यों करते हैं? दुल्हन इतनी सज के क्यों आती है? छोटे से न्यूबॉर्न बेबी की क्यों इतनी तस्वीरें शेयर करते हैं? नज़र लग गई तो क्या करेंगे, फिर रोएंगे? फिर इसी तरह सुबह शाम के अस्कार मुआवजात हैं, और हासिद के साथ एहसान कीजिए ताकि उसका दिल आपकी तरफ से ज़रा ठंडा हो जाए। उससे दूरी इख्तियार कीजिए, इजहार ना करें, नेमतों का एक्सपोजर ना कीजिए। ये दिखाने की नहीं, छुपाने की चीज़ें हैं। आज तो ज़रा शक्ल अक्ल अच्छी हो जाए तो हम छुपा नहीं सकते, कहते फ़ायदा क्या, इतने अच्छे लग रहे हैं तो अब अपने लिए पहने हैं कपड़े। चलो लॉकडाउन है ना, कोई बात नहीं, अभी तस्वीर खींच के सारे कॉन्टेक्ट्स को भेजती हूँ, घर बैठी दोस्तों के दिल जलेंगे कि ये कौन से ब्रांड का सूट पहन के आ गई। तो फिर अल्लाह ताला आपको मुझे हमारे अपने ही अमाल की बुराइयों से बचाए, और मिन सैयाति अमालिना से वाकई बचने की ज़रूरत है। अगली टिप लीजिए, लोगों के साथ हुस्ने अखलाक कीजिए इख्तियार। कैसे? हुस्ने अखलाक बरकत और सआदत का बायस है, बद अखलाकी बदबख्ती और बदनसीबी की बात है। हदीस में कि आदमी अपने हुस्ने अखलाक से नमाजी और रोज़ेदार का दर्जा पा लेता है, मुराद है कि नफली नमाजें नफली रोज़े। याद रखें कि फ़राइज़ को कोई चीज़ भी रिप्लेस नहीं करती। क्या मैं ना बताऊं कि तुम में मुझे सबसे ज़्यादा महबूब और क़यामत में सबसे करीब बैठने वाला कौन है? वो लोग हैं जिनके अखलाक ज़्यादा अच्छे हैं। तुम अखलाक के बुलंद मर्तबे पे हो, अल्लाह के नबी को फरमाया सूरत कलम में। अल्लाह की रहमत ही तो है कि इसने आपको इनके लिए नरम बनाया। फबिमा रहमत मिनल्लाह लिन्त लहुम, आले इमरान। अगर अब सख्त दिल तो शुरू होते तो ये आपके पास से भाग जाते। और लोगों से भली बात कहो, वकूलु लिन्नासी हुस्ना। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा अल्लाह के नबी के औसाफ़ में फरमाती हैं कि आपका अखलाक कुरान था। कुशादा दिली और हुस्ने अखलाक जल्द मिलने वाली नेमत और ख़ुशी है जो इन्हें को अता होती है जिनके साथ अल्लाह खैर चाहे। तो अगर आपका अखलाक अच्छा है, आपका दिल खुला है, आप खुले दिल वाले हैं और माफ़ भी जल्दी करते हैं और लोगों पे माल भी लटाते हैं, तो कह लीजिए कि अल्लाह ने आपके साथ खैर का मामला किया। इसी तरह सूरत इन्फ़िआल, मिजाज की हिद्दत और शिद्दत गज़ब मुस्तकिल बुराई और हमेशा का अज़ाब है। सूरत इन्फ़िआल क्या होती है? जल्दी से गुस्सा आना, इमोशनल, जज्बाती, गुस्से के तेज़। और मिजाज की गर्मी, हर वक्त गर्म नहीं, तो जब बात की सुनी तो गर्मी आ गई, आंखों में आग निकल आई। और इसी तरह शिद्दत गज़ब, याद रखिए ये बुराइयाँ हैं, अपने मिजाज से इनको निकालिए। अपने बच्चों से शुरू करेंगे ना तो बाहर के लोगों के साथ भी हुस्ने अखलाक होगा। तो क्या सीखा? हुस्ने अखलाक क्या है? बड़ों की इज्जत करना, छोटों पर शफकत करना, नेकी का हुक्म और बुराई से रोकना, मुस्कुराना, स्माइल तो दीजिए एक, गुस्से पे काबू रखना, आवाज़ ऊंची ना करना, और जुल्म ना सहना, यानी किसी को जुल्म करने भी नहीं देना, ये अच्छा अखलाक होता है। हम कहते हैं वो गुनाहगार हो जाए मैं सब्र करूंगी, ये ठीक तरीका नहीं है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हम में से नहीं है जो बड़ों की इज्जत ना करे, छोटों पर शफकत ना करे, नेकी का हुक्म ना दे और बुराई से मना ना करे। देखिए इतनी बड़ी बात है, हम में से नहीं है, क्या मुराद है? मुसलमान ही नहीं है। अच्छा अखलाक क्या फ़ायदे देता है? पहली बात है सआदत का बायस है, लोगों की मोहब्बत पाने वाली चीज़ है और अल्लाह की पसंदीदगी का जरिया है। अगली टिप लीजिए, परेशान ना हो इस पर अमल कीजिए। किस पर? पहली बात, जिसको नींद ना आती हो वो क्या करे? बेख्वाबी में नींद मुश्किल से आती है, आदमी बिस्तर पर करवटें बदलता है, तो क्या करेंगे आप? नोट कीजिएगा, शरई अस्कार पढ़ें। अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता। दिन में ना सोएं इल्ला ये कि बहुत ज़रूरी हो जाए, क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है कि दिन हमने मुआशी भाग दौड़ के लिए बनाया, वजअलना नहारा माशा, सूरत अम्मा यतसालून। फिर इसी तरह सोने तक लिखते पढ़ते रहें, क्योंकि वकुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, सूरत ताहा आयत 114। और वैसे भी लिखने पढ़ने का काम करें, फौरन नींद आ जाएगी। अगली टिप क्या है कि दिन में मुफीद काम करके जिस्म को थका दें, और अल्लाह ने दिन उठने के लिए बनाया। बेदारकुन चीज़ें मसलन कहवा और चाय कम लीजिए। शायर कहता है कि हमने अपने दोस्तों से रात के तवील होने की शिकायत की तो कहने लगे, हमारे नज़दीक तो रात बहुत छोटी होती है, वजह यह कि उनको नींद आती है और हमारी आंखों से दूर रहती है। और हकीकत है सोता बंदा है तो कहता है हाय सुबह हो गई, नींद ही नहीं पूरी हुई, आँख ही लगी थी, उठा नहीं जा रहा, आंखों से खुमार ही नहीं दूर हो रहा नींद का। और जो जागे वो कहते इतनी लंबी रात थी, अल्लाह ना करे कभी दर्द हो, कोई परेशानी हो, कोई गम हो तो रात लंबी हो जाती है। आदमी गुनाह करता है तो इससे तलखी पैदा होती है, जबकि इताअत में खिलावत, ईमान में बशाशत और ख़ुशी का एहसास होता है। इब्ने तैमिया रहमहुल्ला फरमाते हैं, मासी यानी गुनाह दिल को तौहीद की जोलान गाह में जाने से रोक देते हैं। जोलान गाह कह लें बाग, खुशी की जगह। कहिए देखो क्या है आसमानों में और ज़मीन में। तो क्या सीखा? परेशान ना हो, बल्कि ये जो नसीहतें आपको की गई हैं इधर, इस पे अमल कीजिए। आप देखिए जो लोग बेख्वाबी का शिकार हैं, जिनको नींद नहीं आती, फिर वो नशावर अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, ट्रैंकलाइजर्स लेते हैं या स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, नतीजा क्या है? सेहत ख़राब होती है। तो क्या करें? तसन्नो छोड़िए, अपनी ज़िंदगी को सादगी पे लाएं, फितरत पर आ जाएंगे तो नींद बड़ी अच्छी आएगी। फिर इसी तरह आप देखिए, अगर बेख्वाबी का शिकार हैं तो दिन में ना सोएं, रात के असकार पढ़िए, सोने तक पढ़ते लिखते रहिए, दिन में कोई थकने वाला काम कीजिए, चाय कॉफ़ी कम पिए। और इसी तरह अगर बेख्वाबी का इलाज करना चाहते हैं तो रात का खाना सोने से 3-4 घंटे पहले खा लीजिए, खाने के बाद सैर कीजिए। तमाम स्क्रीन सोने से पहले बंद। ये आंखों की भी तो स्क्रीन बंद हो जाती है ना, ऊपर पपेट आ जाते हैं हमारे छोटे छोटे पपोटे, तो अपनी सारी स्क्रीनें बंद करके सोएं। मुराद ये है कि हर वो चीज़ जो बेकार है उसको हटा दीजिए, फिर सबको माफ़ करके सोएं। क्या पता कि आज के बाद उठना कब है, कल उठना है या अगले जहान में उठना है या कब्र में जाके उठाया जाना है। फिर इस तरह वुजू करके सोएं, हर करवट पे फरिश्ते आपके लिए रहमत की दुआएं करेंगे। फिर दाईं करवट पर सोएं, तो ये सारी कोशिशों से जो सोना है ना, ये इंशाल्लाह आपके लिए सुन्नतों पे अमल का जरिया बनेगा और आपका सोना इबादत बनेगा। नेक्स्ट टिप लीजिए, मासीयत के बुरे नतायज, यानी जो गुनाहों वाली ज़िंदगी गुजारता है उसके फिर क्या बुरे नतायज निकलते हैं। कुरान पाक की आयतें हैं, बंदे और इसके रब के बीच पर्दा हायल हो जाता है, हरगिज़ नहीं ये बुरे लोग उस दिन अपने रब के दीदार से महजूब होंगे। सूरत मुतफ़िफ़ीन, अल्लाह ताला क़यामत के दिन ऐसे लोगों को अपना दीदार भी नहीं करवाएगा। फिर इस तरह मखलूक को खालिक से वहशत होती है, क्योंकि जब आदमी आमाल अच्छे ना करे तो बुरे गुमान पैदा होते हैं, यानी जब हम गुनाह करते हैं ना तो हमारा दिल नहीं करता मरे या मरने के बाद अल्लाह ताला से सामना हो, और ऑफ कोर्स क़यामत तो बिल्कुल ना है। इसके बरक्स जिन्होंने अच्छे काम किए होते हैं तो क्या दिल करता है? मसलन टीचर जल्दी से आ जाए, पेपर चेक कर ले, मुझसे पूछा जाए आपने क्या सीखा तो मैं जल्दी से लिखूँ, और जिसे ना सुना हो जान पर पड़ी जाती है, अभी कोई पूछेगा क्या सुना तो फिर क्या कहेंगे। मुस्तकिल रंज रहता है, जैसे कि मस्जिद दरार बनाने वालों के दिलों में रहा, सूरह तौबा में जो इमारत उन्होंने बनाई वो इनके दिलों में शक को शुबा डालती है। फिर इस तरह गुनाहों से एक नुकसान क्या होता है कि दिल में खौफ और इस्तराब पैदा होता है। और अल्लाह ताला कहते हैं हम काफिरों के दिलों में रोब डाल देंगे क्योंकि ये अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं। सूरह आल इमरान आयत 151 है ये। और फिर मईशत में तंगी आती है, बिला शुबा इनके लिए तंग जिंदगी है। सूरत तौहा आयत 124, वमन आरदा ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका। फिर दिल में सख्ती और जुल्मत छा जाती है और अल्लाह कहते हैं हमने इनके दिल सख्त कर दिए। फिर इससे देखे चेहरे में तारीकी और तुरशी पैदा होती है, जैसे बस वो लोग जिनके चेहरे काले पड़ गए। क्या तुमने ईमान लाने के बाद गुफर किया? सूरह आल इमरान 106 है। मखलूक के दिलों में बुग़स पैदा हो जाता है और अल्लाह कहते हैं तुम ज़मीन में अल्लाह के गवाह। और आप देखिए गलत काम करने वालों के लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत नहीं रहती। कौन पसंद करे हाईजैकरों को, चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को, कातिलों को? सब उनसे नफरत महसूस करते हैं। इस तरह रिस्क में तंगी होगी। निसा 66, अगर उन्होंने तौरात और इंजील को कायम किया होता और जो इन पर इनके रब की तरफ से उतारा गया तो अपने ऊपर और पैरों के नीचे से रिस्क पाते। फिर इसी तरह एक 10वां नुकसान क्या है गुनाहों का कि मासियत अल्लाह ताला की नाराज़गी मोल लेना है। इससे ईमान में कमी और मसाइब का नज़ूल होता है। अल्लाह ताला कहते हैं वबाव भी गदबिन अला गदब, सूरत अलबकरा आयत 90। वो लौटे अल्लाह के गज़ब पर गज़ब को लेकर। इनके अमल की वजह से दिलों पर जंग लग गया। जी कल्ला बलरान अला कुलूबिहिम, ये भी सूरह मुतफ़िफ़ीन ही है गालिबन आयत 14। और उन्होंने कहा कि हमारे दिलों पर तो ठप्पा लग गया है, सूरह बकरा 88। तो क्या पता चला कि गुनाहों के एक से ज़ायद नुकसान है। चलिए दोहराते हैं ज़रा सा, मासीत के बुरे नतज क्या हैं? पहली बात है, बंदा खालिक से ही बुरा गुमान रखने लगता है। बस अल्लाह ने क्यों इतनी मुश्किल शरीयत दी कि अब मैं उस पर अमल ना करने की सज़ा भुगत रहा हूँ, और मैंने तो नहीं मिलना अल्लाह से, मैं नहीं सामना करता ना उस बिल्ला। फिर इस तरह बंदे और रब के बीच में पर्दा हायल हो जाता है, मुस्तकिल रंज रहता है दिल में, डिप्रेशन, बोझ, खौफ, इज़्तिराब। मईशत तंग होने लगती है, दिल की सख्ती आने लगती है, तुर्श रवि यानी इंसान बदमिजाज होने लगता है, माथा खिंचा हुआ, चेहरे पे खिंचाव है, दिलों में बुग़्ज़ आता है, रिस्क की कमी है और अल्लाह की नाराज़गी का जरिया बनती है। फिर इसी तरह ईमान में कमी होती है, मसाइब का नज़ूल है, दिलों पर कुफल है। और सही मुस्लिम की रिवायत 369 हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे फितने दिलों पर डाले जाएंगे चटाई की बुनती की तरह, यानी तिनका तिनका करके, और जो दिल इनसे सिराब कर दिया गया इसमें एक स्याह नुक्ता पड़ जाएगा, और जिस दिल ने इनको रद्द कर दिया इसमें सफ़ेद नुक्ता पड़ जाएगा, यहाँ तक कि दिल दो तरह के हो जाएंगे। एक सफ़ेद चिकने पत्थर की मानिंद हो जाएगा, जब तक आसमानों ज़मीन कायम रहेंगे कोई फितना इनको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। दूसरा काले मटियाले रंग का औंधे लोटे की मानिंद, यानी दिल ही उलट जाएगा, जो ना किसी नेकी को पहचानेगा और ना किसी बुराई से इनकार करेगा सिवाय इस बात के जिसकी ख्वाहिश से वो दिल लबरेज़ होगा। तो अल्लाह ताला हमारे दिलों पर ये सारी कैफियत गुजरने से हमें महफूज रखे। क्या सीखा? हासदीन से बचने के लिए जिक्र अज़कार कीजिए, नेमतों की नुमाइश नहीं करनी, हुस्ने अखलाक लाना है, बेख्वाबी के इलाज के लिए फितरत के करीब और सुन्नत के तरीके अपनाने हैं, मासीतों से यानी गुनाहों से बचना है, इनकी वजह से फितनों का नज़ूल होता है, तो इन फितनों से ख़ुद को बचाने की और रोकने की कोशिश करनी है, और अल्लाह ताला इसको हमारे लिए आसान फरमा दे। अगली टिप लीजिए, रोज़ी की तलब में हिर्स से काम ना लें। आज ये भी बहुत बड़ा गम है और ख़ास तौर पर मर्दों का कि और से और, खूब से खूब। तो मिट्टी में जो कीड़ा होता है उसे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़ी देता है, ज़मीन में भी जो चौपाया है इसका रिस्क अल्लाह ताला के ज़िम्मे है, इन चिड़ियों को जो घोंसलों में होती हैं अल्लाह गफूरुन शकूर खिलाता है, इसी तरह तमाम परिंदों को रिस्क रसानी करता है, जो सुबह में खाली पेट निकलते हैं और शाम को भरे पेट वापस आते हैं, पानी में जो मछली होती है इसे भी ज़मीन व आसमान का पालने वाला रिस्क देता है, वो खिलाता है और उसे खिलाया नहीं जाता। आप तो कीड़े, परिंदे और मछली सबसे बढ़कर हैं, इसलिए मैं रोज़ी के लिए क्यों परेशान हूँ? कितना सूदिंग, आप देखिए कि ये एहसास है कि कि कीड़ों को और चींटियों को खिलाता है तो मुझे भूखा छोड़ेगा वो? कभी आज तक भूखे सोए? सच बताइए, इतनी जिंदगी गुजर गई तो आपका मेरा कोई वसफ है कि हमें ये कुछ मिले जो हम खाते हैं? ये वो मालिक है, बहाने बहाने से खिलाता है। बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जिन्हें फ़कर, कदूरत और तंग दिली इसीलिए लाहक हुई कि वो अल्लाह से दूर हो गए। तुम पाओगे कि आदमी मालदार है, कुशादगी से रोज़ी रोटी मिल रही है, अल्लाह की तरफ से खैर में है कि अल्लाह की इताअत से मुंह मोड़ लिया, यानी ज़रा दुनिया भरी तो अल्लाह से दूरी, नमाज में सुस्ती बरती, बड़े बड़े गुनाह करने लगा तो इसके रब ने बदन की आफियत और इसकी कुशादगी छीन ली, इसे फ़कर और रंजो फिक्र में मुबतला कर दिया, अब वो परेशानियों का शिकार है। एक मुसीबत से निकलता है तो दूसरी में फंस जाता है, और अल्लाह की बात सच है, वमन आरदन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, कि जो मेरी जिक्र से एरास करेंगे इनकी ज़िंदगी तंग हो जाएगी। और इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं ये इसलिए है, ज़ालिका बियन्ना, क्या कि अल्लाह किसी नेमत में तब्दीली करने वाला न था जिसने लोगों को दी हो जब तक वो खुद अपने आप को न बदल लें। जी, सूरत अनफाल की आयत नंबर 53, और ये बहुत बड़ी हकीकत है, वो जिसको कहते हैं ना कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का, उसी का एक रंग है ये आयत। इसी तरह तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे हाथों की कमाई है। बहुत सी चीज़ों को अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह शूरा की आयत 30 है ये, और अगर वो सही तरीके पर चलते तो हम इनको ठंडा मीठा पानी पिलाते। सूरह जिन में आता है, मान गदका, और बकौल शायर, ए आशिके जार, बहुत आसानी से लैला को तुमने कत्ल कर दिया और अब इसे रो रहे हो, यानी खुद ही मारा अब खुद ही रो रहे हो। तो क्या पता चला कि रोज़ी की तलब अच्छी है, इबादत है, लेकिन इतना ना इसमें खोइए कि अल्लाह को नाराज़ कर दें। क्या पता चला रोज़ी मुतय्यन है, कीड़े मकोड़ों तक का राज़िक अल्लाह ताला, इंसान अफसल है तो अल्लाह इंसान को क्यों ना देगा, और हलाल में किफ़ायत है, थोड़ा भी होगा तो बरकत होगी, हराम में बरकत नहीं, ये अल्लाह से जंग है। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अगर इब्ने आदम अपने रिस्क से इस तरह भागे जिस तरह मौत से भागता है, तब भी इसका रिस्क इसको पालेगा जैसे इसे मौत पा लेती है। सिलसिले सहीहा की ये रिवायत है 1371। तो क्या पता चला कि मालदार शुक्र करेगा, नेमतें ज़्यादा होंगी, मालदार ना शुक्री करेगा, अल्लाह से गाफिल होगा तो कुशादगी ख़त्म हो जाएगी। और सूरह अनफाल 53, ये इसलिए कि अल्लाह किसी नेमत में तब्दीली करने वाला ना था। याद रखिए कि नेमतें देने में अल्लाह का कोई कानून नहीं, हाँ देने के बाद अल्लाह रवैये देखता है कि लोग उन नेमतों के साथ करते क्या हैं। जब लोग खुद को बदल लेते हैं अल्लाह भी नेमत को बदल देता है। मिसालें कौम शुएब की हैं, खुशहाल थे फिर भी नाप तोल में कमी करते थे, नतीजा क्या था कि अजाब इलाही आ गया। अगली टिप लीजिए, हिदायत का राज पाना चाहते हैं, आखिरी टिप होगी आज के सेशन की, तवज्जो और मोहब्बत से सुनिए, शायद इसी में वो सब कुछ हो जिसके लिए अल्लाह ने आपको मुझे यहाँ बिठाया। हम कहते हैं दिन सिरात अल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा तो सआदत उसे ही मिलेगी, इससे वही लुत्फ़ानंदोज़ होगा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोड़े हुए रास्ते पर चलेगा, यही रास्ता जन्नत तक जाता है। शायर कहता है कि मसल के सुन्नत पे ए सालिक चला जा बेधड़क, सालिक कहते हैं चलने वाले को, जन्नतुल फिरदौस को सीधी गई है ये सड़क। हमने इनको सीधे रास्ते की रहनुमाई की, जो सिराते मुस्तकीम पर चलता है वो हुस्ने आकबत पर मुतमईन होता है, इससे यकीन होता है कि इंजाम अच्छा होगा, रब के वादे पर भरोसा करता है और इसके फैसले पर राजी होता है, इस रास्ते पर चलने में खुशी महसूस करता है, इसे मालूम है कि इसका रहनुमा मासूम है जो ना ख्वाहिश से कुछ कहता है ना जलालत की तबाह करता है, मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी बातों में मखलूक के लिए मोहब्बत है, जो शैतान के कचोकों, साथियों की लग्जिशों और इंसानी गलतियों से महफूज है, इसके आगे पीछे फरिश्ते हैं जो अल्लाह के हुक्म से इसकी हिफाजत करते हैं। सूरत रात में ये बात मौजूद है। ये बंदा इस रास्ते पर चलने में सआदत पाता है क्योंकि इसे मालूम है कि इसका एक रब है, इसके सामने एक उसवा है, इसके हाथ में एक किताब है, इसके सीने में एक नूर है, इसके दिल में एक वाइस है, वह नेमतों की तरफ जा रहा है, طاعت کا کام کر رہا ہے، خیر کے لیے کوشاں ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے، جسے چاہتا اللہ ہدایت دیتا ہے۔ وہ زیر لب کہتا ہے رفیق سفر، جسے اندھیرا کہتے ہیں وہ کہاں ہے، میرے دل میں تو اللہ کا نور ہے، وہی مجھے دکھائی دیتا ہے۔ راستے دو ہی ہیں، معنوی اور حسی۔ معنوی جس کو فیل کر لے مائنڈ میں، اور حسی وہ جس کو دیکھ سکیں، چھو سکیں، یعنی سڑک وغیرہ۔ معنوی راستہ ہدایت اور ایمان کا ہے، حسی جہنم کی پیٹھ پر ہے۔ کیا ہے وہ بتائے آپ کو؟ اللہ اکبر، پل صراط۔ ایمان کا راستہ ہے دنیائے فانی کے اوپر ہے، جس پر شہوتوں کے سنڈاس ہیں، یعنی خواہشیں بہت ہیں اس دنیا کے رستے پہ، جیسے کہ دوزخ کے اوپر نصب صراط پر سعدان کے کانٹے جیسے سنڈاس ہیں، یعنی تھون کی معنوں میں کانٹے دار کلوب کہتے ہیں اس کو، جو جہن جو پل صراط پہ کانٹے ہوں گے۔ جو ایمان کے ساتھ اس راستے سے گزر گیا، وہ اس راستے پر سے بھی گزر جائے گا۔ اس کو ہائی لائٹ کریں۔ دنیا کا جو صراط مستقیم ہے، وہی آخرت کا پل صراط ہے۔ جی، جب بندہ صراط مستقیم پا جاتا ہے، تو اس کے تفکرات، رنج اور غم سب زائل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بھی ہدایت کا یہ راز سمجھنے والا بنا دے۔ تو کیا سیکھا ہم نے، دہرا لیجئے۔ حقیقی کامیابی کس کی ہے؟ فمن زخزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، آل عمران 185۔ آگ سے بچ کر جنت میں داخلہ، یہ نہیں کہ کچھ دن آگ میں گرائے گئے پھر نکالے گئے، نو۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ کامیابی کی سڑک کا دوسرا نام۔ صراط مستقیم پر جو چلتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، رب کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے، اس کو روحانی سکون ملتا ہے، دنیاوی نقصان پر صبر کرتا ہے۔ ایسا ہی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہوگا، جنت کا طلبگار ہے یہ، اور یہی ہے جو انشاءاللہ جنت میں پہنچے گا۔ تو پھر آپ نے میں نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ روزی متعین ہے، حلال سے لینی ہے، رزق کی کثرت ہو تو شکر ادا کرتے رہنا ہے، حقیقی کامیابی جنت ہے، اس تک پہنچنے کے لیے صراط مستقیم پر چلنا ہے، اور صراط مستقیم پر چلتے دنیاوی نقصانوں کا غم نہیں منانا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اسی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھی آج آپ کے نصیب میں وہ چند ٹپس جو ہم نے غموں کو خوشیوں میں بدلنے کے لیے سیکھی۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ برحمتک استغیث، آمین۔